पार अब लगा देना सावन प्यारे किश्ती मेरी, पार अब लगा देना हमर में आई हुई है इसे बचा बचा लेना सावन हरि की भुलाना हमको ना दुनिया के दस्त में प्यारे भुलाना हम को ना दुनिया के दस्त में प्यारे डगर की अपने हमें राह तुम बता देना डगर की राह हमें प्रभु दिखा देना सावन हरि की मेरी पार अब लगा देना भंवर में आई हुई है इसे बचा मरीज इश्क तुम्हारा है जाबल सावन मरीज इश्क तुम्हारा है जाबल सावन शफा वो जिस से दवा ऐसी कुछ खिला देना शफा हो जिस से दवा ऐसी कुछ खिला देना सावन प्यारे मेरी किसी हम सदा भूलते रहते हैं दाँव दाँव पर न हमको आप कहीं जाने मन भुला देना न हमको आप कहीं जाने मन भुला सावन हरि की मेरी पार अब लगा हम जुदाई में तेरी जीते मरे रहते रात दिन आग के बिस्तर पे पड़े या तो अब जान ही ले या रुख अनवर को दिखा दोनों ही बातों पे तैयार खड़े रहते जिगर में सोज है और दिल में दर्द रहता है जिगर में सोज है दिल में दर्द रहे इलाज इसका है दीदार का करा देना इलाज इसका है दीदार का करा देना प्यार सावन मेरी नैया पार हवाए दीदन जाना की आग जो हर दो लगी हुई है जो दिल में उसे बुझा लगी हुई है जो दिल में उसे बुझा देना सावन हरी की थी मेरी पार अब लगा देना भंवर में आई हुई है इसे बचा देना मुझे शिकवा नहीं बर्बाद रख आबाद रहने दे मगर सावन तू अपने दिल में मेरी याद रहने दे मेरे नाशाद रहने में अगर तुझको मुसर्रत है तो मैं नाशाद ही अच्छा मुझे नाशाद रहने दे जिगर में सोज है और दिल में दर्द रहता है इलाज इसका है दीदार का करा देना इलाज इसका है दीदार का करा देना सावन हरी की मेरी पार अब लगा देना भंवर में आई हुई है इसे बचा देना लाके टुर गया फट जुदाइयां दे ते महर मलानियां याद ना आया मैं बैठा सा ब्यास ना फेर मिलिया दें दे लोग ब्यास दुहाइयां ने साड़े छुट्टियां अगब छोड़ियां दे ते मेहरा कदे ना आन बरसाइयां ने असि याद कर दे तेनों सुपनियां विच टूंड सुटिया फुल लगाइयां ने एक वार ते फेर पी याद दर्शन एक बार ते सामना दे दर्शन थनाल जो आप पुलायानी असी एक खिड़ी गुलदार दिया मलिया वे कलिया तेरे बाज मुरझायानी गीत बुलाऊ गीत पुल गए गौंदियां बुलबुला लो सदा ततड़ियां तड़फाइयां मेरे देश चौड़ उजाड़ पागे ते चढ़िया केड़े था सामना लाया ने जे मैंने एक हुंदी तासी गम कदा गुनागार हां तायों कबराया मैं रोज आखिर दे देना कंध मैलो खूंडी वालिया सामना साइया
कोई दुखड़ा मनावनी मेरा सगन सब लिया मेरा सजन सज लिया राजी कोई मुठ गया मेरा जीत ले जा उठ गया मेरा सजन सज लियावनी कोई रुछड़ा सं मनावनी मेरा सजन सज जद नैन मेरे दो चार हो जा सन मुख प्री तम यार हो कोई अर शांति ले पार हो जी जांदा कोई रुठड़ायान मनावनी कोई रुठड़ायान मनावनी मेरा सजन सज सज लिया जादू मैं सिर पाए गया
राम से कोई राज राम से कोई राजी लाठी का निकला अंधा बिन लाठी का निकला अंधा राह पे कोई लगा दे तुझे राम से कोई लादे तुझे राम से कोई लादे कोई कहे वो बस अवध में कोई कहे वो बस अवध में कोई कहे वृंदावन में कोई कहे वो बस अवध में कोई कहे वृंदावन में कोई कहे तीर्थ मंदिर में कोई कहे तीर्थ मंदिर में कोई कहे मिलते वन में कोई कहे मिलते वन देख सकूं मैं अपने मन में देख सकूं मैं अपने मन में ऐसी ज्योति जगा दे मुझे राम से कोई लादे मुझे राम से कोई लादे लाठी का निकला अंधा बिन लाठी का निकला अंधा राह पे कोई लगा दे राम से कोई लादे मुझे राम से कोई लादे करो रे मन वादन की तदबीर करो रे मन वादन की तदबीर जब जम राजा आन पड़ेंगे जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरती नहीं भी करो रे मन वादन की तदबीर मुगरन मार के प्राण निकासत मुगरन मार के प्राण निकासत नैलन भर आयो नी नैलन भर आयो नी करो रे मन वादन की तदबीर भव सागर का अगम पंथ है भव सागर का अगम पंथ है नदिया बैत गंभीर नदिया बैत गंभीर करो रे मन वादन की तदबी नाव न बेड़ा लोग गनेरा नाव न बेड़ा लोग गनेरा केवट है
परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान आत्मनिर्धारी को कहते हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। परमात्मा ने कोई मोरे लगाकर नहीं भेजी, अरे भाई तुम कौन हो। यहां समाजें हम लोगों ने बनाई किस लिए, कि इंसान मिलजुल कर रहने वाली हस्ती है, सोशल बीइंग। खास खास कानून बना दिए कि ये लोग उसके मुताबिक अपना जीवन बसर करें ताकि दुनिया में करप्शन न पैदा हो, लोग सदाचारी और नेक पाक बने, इंसान इंसान के काम आए, ताकि ये जो मनुष्य जीवन की यात्रा है संसार में, ये सुख से बती। ये समाजों का पहला पहलू है, मगर दूसरे पहलू को भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। वो आत्मा का अनुभव करना, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज को हासिल करना, तुम कौन हो, 5-6 फुट के पुतले जो तुम लिए फिरते हो, क्या ये तुम हो। हम इस 5-6 फुट के पुतले के चिल्लाने वाले हैं, इस पुतले के इंडवेलर ऑफ दी हाउसेज हैं, मकान नहीं इसके मकीन हैं, वो हम हैं। और वो चीज एक दिन आता है जिस दिन हमने इसको छोड़ना पड़ता। जो कोई भी आज तक दुनिया में आया उसको आखिर ये जिस्म खाली करना पड़ा। ये काल का मकान है, काल कुवारी काया, इस काया का काल के साथ मंगेवा हुआ पड़ा। वर जासी परनाय, वो आकर एक दिन जिसम को ले जाएगा, खाली कराना पड़ेगा। जो इसके मकीन है ना मकान का, वो हम है, उसको हमने जानना। जिसने उसको जान लिया वो परमात्मा के जानने के काबिल हो गया, जिसने उसको नहीं जाना वो प्रभु को नहीं जान सकता। कारण क्या है? परमात्मा महाचेतन का समुद्र है और ये आत्मा उस रात की एक बूंद कहो अंश कहो, ये भी चेतन है, कॉन्शियस एंटिटी है। कॉन्शियस नहीं, चेतन चीज नहीं, महाचेतन को जानना है। न मन ने जानना है, न बुद्धि ने, न प्राणों ने, न इंद्रियों से वो जाना चाहता। जब तक हम अपने आप का अनुभव नहीं करेंगे उस परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों भाई एक ही मकान में जब से ये दुनिया में आई है और एक ही संगत में रह रहे हैं, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रहते तो एक ही संगत में हैं और एक ही मकान में, मगर दो भाई आपस में बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे आत्मा परमात्मा को नहीं जान रहा, नहीं देख रहा। तो दो पहलू बने, बाहरी जिस्मानी लिहाज से, एक तो जिस्म और उसके ताल्लुकात, इंद्रियों का घाट और उसका ज्ञान दृष्ट जो है, ये एक पहलू। दूसरा पहलू अपने आप का जानना और प्रभु का पहचानना। परमात्मा अदृष्ट है, अगोचर है। जब तक हम दृष्ट मान दुनिया में इंद्रियों के घाट के जरिए इसमें लंपट हो रहे हैं, हम उसको नहीं जान सकें। ये डाइजेस्ट है जो सब महात्माओं ने दिया। ए वड ऊंचा होवे को तिस ऊंचे को जाने सो, जितना वो मालिक ऊंचा है उतने ही जब तक हम ऊंचे नहीं होंगे हम उसको नहीं जान सकेंगे। वो अति सूक्ष्म और अगम है। हम जब तक जिस्म का रूप बने बैठे हैं हम भी उतने ही सूक्ष्म और अगम नहीं होंगे, उसको नहीं जान सकेंगे। तो ये है मजमून जो सब महात्माओं ने दुनिया के सामने रखा। हम दुनिया में आते रहे, आत्मा मन के अधीन, इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी रही, जगत का रूप बनी रही, अपने आप को भूल गए। गुरु नानक साहब ने बड़ा अच्छा फोटो खींचा इसका, फरमाते हैं पुलावड़े पुली पोल पोल पछोताने। हम इस भुलेखे में भूले रहे, हम जिस्म का रूप बने रहे थे, जिस्म के चलाने वाले, इसका रूप इतने आइडेंटिफाई हो गए हम जिस्म के साथ कि इसके चलाने वाले को जो अपना आप है उसको भूल चुके। कोई हमसे पूछता है तुम कौन हो, हम कहते मैं रामदास हूँ, मैं राम सिंह हूँ, मैं अल्लाह मोहम्मद दीन हूँ, ये वो। छोटे बच्चे को हमसे ज्यादा ऐसा सभी बातें। छोटे बच्चे को कहो तुम कहाँ हो तो वो आंखें फाड़ता है, मुंह खोलता है, उसको कुछ अभी एहसास बाकी है कि मैं यहां कहीं हूं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उतना जिस्म का रूप बन जाते हैं कि हम तमीज करने के काबिल नहीं रहते कि हम जिस्म हैं या इसके चलाने वाले। तो ये है आदर्श जो एक हजरत इंसान के सामने है। जिसने मनुष्य जीवन पाकर इसका अनुभव कर लिया उसका जीवन सफल होगा। जिसने ये काम नहीं किया मनुष्य जीवन पाकर वो मनुष्य जन्म को गंवा गया। अब देखिए हम कर क्या रहे, हम जिस्म जिस्मानियत और उसके तालुकात में दिन रात लंपट हो रहे हैं। कभी भी हमारी तवज्जो अपने आप की तरफ नहीं की गई जिसने के एक दिन इस जिस्म को खाली करना। जिक्र से सहेलरी जिक्र साथी ना हो, जब तक आत्मा रूपी सहेली जिस्म के साथ बस रही है, साथी इसके साथ बस रहा है, तब तक ये घर हमारा आबाद है। जब जहां साथी उसकी चलिया तक धन खाकुरा, जब इसका मकीन इसका साथी इसे निकल जाता है तो ये मिट्टी का ढेर मिट्टी में बना दिया जाता। तो इसके जानने का नाम, चेतन को जड़ से एनालाइज करने का नाम अपने आप का अनुभव है। कहो नानक बिनापा चीने मिटे न भ्रम की काय। ऐ नानक जब तक हम अपने आप को चीनते नहीं, एनालाइज करके अपने आप का अनुभव नहीं करते, वो ताकत जो इस जिस्म को चला रही है उसको इससे आजाद करके नहीं देखते, तब तक मिटे न भ्रम की काय। भ्रम कहते हैं जो चीज असल में कुछ और हो और नजर कुछ आ रहा है। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं मगर इतने भूल गए, जगत छतमार भास रहा है और जिस्म भी छतमार रहा है, हालांकि दोनों बदल रहे हैं। हम एक बड़े भारी धोखे में जा रहे हैं। हमें जगत क्यों छतमार रहा, इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि जब दो चीजें एक ही रफ्तार से जा रही हो तो जो उसमें बैठे हुए हो वो मालूम होते हैं खड़े हैं। मिसाल के तौर पर आप दरिया में जा रहे हो एक बेड़ी में सवार, बेड़ी उसी तरफ जा रही है जिस तरफ के पानी जा रहा है, एक ही रफ्तार से दोनों जा रहे हैं। जो बेड़ी में सवार है वो गिरदा गिर पानी को देखते हैं, वो मालूम होता खड़ा है। एक आदमी बेड़ी से बाहर खड़ा हो जाता, वो देखता है कि बेड़ी भी बह रही है और उसके सवार भी बह रहे हैं। वो कहते हैं अरे भाइयों तुम तो बह रहे हो, ये जगत धुएं का धावल हल, होश में आओ। वो कहते हैं भाई हम तो ठीक ठाक है, हमारा ये भी खड़ा हम भी खड़े। तो ये एक ऐसा धोखा है, इस भ्रम में हम जा रहे हैं। क्या पढ़े क्या अनपढ़, क्या अमीर क्या गरीब, क्या हाकिम और क्या महकूम, इसी में भूल में रहे। मगर एक वक्त आता है जब अंत समय जिसको कहते हैं रूह पिंड से निकलने लगती है, तब थोड़ी होश आती है। कहे कबीर से इनर जागा जब यम का दंड मूड में लागा। कबीर साहब कहते हैं तब इसको होश आती है जब यम का डंडा इसके सिर में लगता है, आंख खुली, अरे भाई ये जिस्म भी यहां रह गया, ये जगत भी यहां रह गया। उसमें होश आती है, हो ये तो सब फजूल था, प्राणी तू आया लाह लैंड लगा कित को फकर मुक्ति चली रहे। अरे प्राणी प्राणधारी इंसान तू दुनिया में आया था इसे पूरा फायदा उठाने के लिए, अरे तू किन फजूल कामों में लग गया। ये किन की नजर से है, जिनकी आंख खुली, जिन्होंने आत्म अनुभव करके प्रभु का अनुभव कर रहे हैं, उनकी नजर से है। तो ये एक बाकायदा साइंस है, जैसे और ज्ञान है ना, नॉलेज है जमीन के, माइंस के, एस्ट्रोनॉमी के, बॉटनी के, वो भी बाकायदा ज्ञान है आपको अपनी जगह। मगर उन ज्ञानों से, उन ज्ञानों का तलक इंद्रियों के घाट से, और इसमें संतुष्टि नहीं। जो आत्म ज्ञान है अपने आप का जानना और प्रभु का अनुभव करना है, इससे संतुष्टि हो जाती। उपनिषदों में ऋषि से सवाल किया गया, भारद्वाज ऋषि से कि महाराज वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है। तो वहां यही निर्णय किया है कि दो किस्म की विद्याएं हैं, एक अपराविद्या एक पराविद्या। जो अपराविद्या है उसमें रसम रवाज ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना तीर्थ यात्रा हवन दान ये वो जितने इल्म ये सब काम है, इनकी गर्ज से इंसान नेक पाक सदाचारी बनना है, जमीन की तैयारी है। इसे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण और पूर्ण संतुष्टि या तृप्ति के लिए हमें आत्म ज्ञान को पाना होगा। वो कैसे पाया जा सकता है? आत्मा जो इस वक्त मन और इंद्रियों के अधीन होकर जिस्म का रूप जगत का रूप बनी बैठी है, इस तरफ से हटा कर इसको लिबरेट करके आजाद करके अपने आप का अनुभव और ओवर सेल्फ प्रभु परमात्मा का अनुभव करने से हमेशा के लिए तृप्ति हो जाती है। दुनिया के देखने वाली आंख बदल जाती है, एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाता है। तो ये एक बाकायदा साइंस है। इनके पाने के लिए किस किस लवाजमे की जरूरत है? कोई इल्म भी हासिल करना हो उसके लिए खास खास चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि इंसान के अंदर उसके पाने की ख्वाहिश पैदा हो। जिसको ख्वाहिश ना हो, भूख ही ना हो, उसको रोटी से क्या फायदा? एक ने गाना सीखना ही नहीं, ख्वाहिश तान पहले उसकी जूते धारता पड़े। ये ख्वाहिश हमारे अंतर में कब आती? जब दुनिया के नशे फराज से इंसान गुजरता है, कभी कोई मरता है, कभी तकलीफ कभी मुश्किलों से गुजरता है, कहते अरे भाई ये क्या बात है। जिसको ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल सामने आता है, वो इसके लिए कोई न कोई उपाय करता है। महात्मा बुद्ध थे, शहर में गए सैर करने को। वहां देखा एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, चल नहीं सकता था, लड़खड़ा रहा था, लकड़ी के सहारे जाता था। पूछा ये क्या है? क्योंकि कभी उन्होंने उस वक्त तक बूढ़ा आदमी देखा नहीं था, समझे? बूढ़ा आदमी देखा नहीं था। तो आगे गए, उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है? इंसान बूढ़ा हो जाता, इंसान बूढ़ा हो जाता। हैरान हुए हैं, इतनी सुंदर काया क्या जिस्म से निकलकर उसकी ये गति हो जाती है? उसके बाद आगे गए तो चार भाई एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। पूछा ये क्या है? तो उनको कहा गया कि भाई इंसान की मशीन जिस्म जो है ये एक दिन खाली करना पड़ता है, इसके मकीन का मकान चला जाता है, मकान का मकीन। हैरानी हुई है, ये इतनी सुंदर काया है, उसकी ये गति? दिल को चोट आई। इतिहास ये बतलाता है कि वो अपने घर में गए, घर में जाकर उसी रात उनके लड़का भी हुआ था। दुनियादारों के लिए ये बड़ी खुशी का सामान है, मगर वो दिल दबाव में मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल जो घर कर गया था, वो बेचैन थे। घर छोड़ा, जंगलों की राह ली, इसी मिलने को हल करने के लिए लग गए। तो जब भी दुनिया के नशे फराज या ऐसी चीजें हमारे नजर में आती हैं, फिर ख्याल पैदा होता है, अरे भाई ये बात क्या? जिस इंसान के अंदर ये चीज ऐसी हालत गुजरे, उसके दिल में फिर जानने की ख्वाहिश पैदा हो। अब ख्वाहिश पैदा हो, पहला सवाल कि ये जिंदगी का मिम्मा क्या है? कौन सी चीज है जो इस जिस्म से निकल जाती है और इस वक्त इस जिस्म को चला रही है? वो कौन है? वो हमारा अपना आप है, वो हम है, क्या हमने उसको जाना है? सवाल करिए। दूसरी बात, इसके बाद कुदरती ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने इस मिम्मे को हल किया है उनके पास जाए। कोई इल्म भी सीखना हो, खाए बाहरी हो खाए अंतरी हो, बाहरी मामूली बावर्ची का काम भी सीखना हो ना, उसके लिए भी हेड बावर्ची के नीचे काम करना पड़ता है। कई बार जो उसकी गालियां चपेड़े में खाता है फिर निम्क ठीक जाना आता है। तो कोई भी इल्म हो जब उसके पाने की ख्वाहिश हो कुदरती बात है हम उसके पास जाएंगे जो उसका अम्मा है, ये कह दो उसका उस्ताद मिले। जब उस्ताद मिले तो पोजीशन क्या बनती है, क्योंकि बगैर उस्ताद के कोई चीज हासिल नहीं होती। बाहरी दुनिया के इल्म ले लो उसके लिए उसके माहिर के पास जाना पड़ता। अरे भाई एक ऐसा इल्म जो अदृश्य का इल्म है, इन्हीं के घाट तो हम देख रहे हैं, इसको तो हो सकता है हम देखकर कुछ सूझबूझ कर लें। जो पेड़ से ऊपर जहां ये इंद्रिय रह जाते हैं बाहरी स्थूल पहले फिर सूक्ष्म फिर कारण, क्या उस तरफ जाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। अवश्य कहना पड़ेगा पहले ख्वाहिश हो, ख्वाहिश हो तो तब तलाश उस्ताद की होती। अगर ख्वाहिश ही ना हो जैसे मैंने पहले अर्ज की, अगर हमने गाना सीखना है तो तानसेन की जूतियां झाड़ेंगे, अगर गाना सीखना ही नहीं तो तानसेन हमारी जूतियां झाड़ता रहे। आप देखिए दुनिया में पूर्ण पुरुष आए गुरु नानक साहब जैसी हस्ती और महापुरुष, घर बार छोड़ा लोगों को परोपकार की खातर सोते हुए जीवों को जगाने के लिए, और हम लोगों ने उनको क्या कहा, कुराइया करके बयान किए। किन लोगों ने जिनको जरूरत नहीं थी या और गर्दों से बंधे हुए थे, सवाल तो यह। मसूर के शहर में इतिहास बतलाता है कि लोगों ने उनको अपने गांव में नहीं जाने दिया, कहा कि ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। सवाल तो जरूर उठता है लोगों। तो पहले ख्वाहिश हो किसी इल्म के भी हासिल करने की, अगर ख्वाहिश नहीं होगी तो कोई नहीं करेगा। जिसको ख्वाहिश होगी फिर वो कुछ न कुछ करेगा, और वो क्या करेगा, पहले किताबों में तलाश करेगा, कायदे की बात, डायरेक्टरियों को खोलेगा। अगर आप किसी फॉरेन मुल्क में जाना हो आपने अमेरिका इंग्लैंड और कहीं, तो आपके अंदर पहले प्रबल ख्वाहिश हो फिर आप कोशिश करेंगे ना जाने की। बस तो प्रबल ख्वाहिश हो तब तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टरीज देखते हैं। अरे भाई किस जहाज पर जाना है, उसके टिकट का क्या खर्च है, रास्ते में मुमकिन है ऐसी जगह है जहां पर फ्रेंच जबान बोली जाती है जर्मन बोली जाती है वो हम कैसे समझेंगे, ये सारी बात का फिक्र होने लगता। फिर हम वहां चले जाएंगे तो वहां कहां रहेंगे, किसके यहां जाएंगे, फिर लोगों से मिलते, अरे भाई तुम्हारा कोई दोस्त वहां चिट्ठी ले दो वो हमें रिसीव करने आए, ये सारा द्वार में हम बजा जाते। अगर ये डायरेक्टरी खोलते खोलते कोई आदमी आ जाए हमको ये कह दे कि भाई जहां तूने जाना वहां से अभी एक आदमी आया, तो हम क्या करेंगे आप बताएं। हम डायरेक्टरियों को करेंगे बंद और भागेंगे उसके पास, यानी कि डायरेक्टरियों में उसका जिक्र है, कई बातें समझ नहीं आती लेकिन फैल नहीं होती, मगर फौरन इंसान वो उस आदमी के पास जो उस मुल्क से आया फौरन उसके पास जाए, कुदरती बात है। उसके पास जाता भाई मैं वहां कैसे जाऊंगा, और वो देखकर आया है ना, जो देखकर आया है तजुर्बा करके उसके बयान में बड़ी वजाहत है, बड़ा खोल कर समझा, उसने देखी हुई बात कहता ना, एक तो पड़ी हुई बातें कहता इंसान डायरेक्टरियों को खोलने वाला, एक देखकर आया उसके बयान में और किताबों में लिखे के बयान में बड़ी भारी समझने में फर्क है। तो उसके वो अगर ये कह दे कि अगले महीने मैंने फिर जाना है वहीं, तो आप बताएं आपको कितनी खुशी होगी, फिर आपको क्या डायरेक्टरियों की जरूरत रह जाती है, बाकी कोई नहीं। ये तो है बाहरी निशान, हमारे हम आत्मा हैं, पिंड में कैद है, मन इंदु के गुलाम हो, जिसम का रूप और जगत का रूप बने बैठे। अरे भाई हमने सफर करना, पिंड को छोड़ना, इंटू दी बियॉन्ड जाना, बियॉन्ड का ग्रंथों पोथियों में जिक्र है, जितने ऋषि मुनि महात्मा है इसका तजुर्बा करते रहे, جیسے میں نے آج صبح کے مضمون میں عرض کیا تھا، اس کا تجربہ کرتے رہے اور اس کے بیانات ہمارے پاس گرنتھوں پوتھیوں کی شکل میں موجود ہیں. یہ ہیرے اور جواہرات سے قیمتیاں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ادھر جانا، باقیوں کے لیے کچھ نہیں. باقی کہتے کیا یہ تو بھائی نکموں کا کام ہے. ارے بھائی یہ ہیرے جواہرات کی قیمت ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑ کر پربھو کو پانا. تو دوسرے ہفتے وہ ساتھ اس کے جاتا بے فکر ہو جاتا. یہ ہے ایک باہری مثال، ہم نے ادھر جانا ہے. قدرتی بات ہے جو جن کی آتما پن کو چھوڑ کر انڈ برہمنڈ اور اس کے پار سفر کیا ہے، ان کا نام سادھو، ان کا نام رشی، ان کا نام مہاتما، اس کی صحبت ہم کریں. اس کی صحبت میں ہر ایک چیز آسان ہو جاتی ہے. ارے بھائی یہ گرنتھ پوتھیاں کہاں سے آئیں؟ غور سے سمجھو، یہ ان مہاتماؤں کے بیش قیمت ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے املیک لالے بچن، جنہوں نے آتم انبھو پایا ہے اور پرماتم انبھو کو پایا. ان کی صحبت میں یہ سب کچھ گیان ملے گا، یہ سب آؤٹ کم ہے اس کا. وہ یہ کچھ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. میں آپ کو عرض کروں، گرو نانک صاحب تھے، ایک پوری اداسی انہوں نے عرب فارس کی طرف افغانستان کی طرف گزاری ہے، پوری اداسی، ون ٹریول، ایک سفر. مگر گرو گرنتھ صاحب میں وہ ڈیڑھ شبد فارسی کا ملتا ہے، باقی نہیں. کیا وہ ایک پوری اداسی ڈیڑھ شبد ہی اچارن کرتے رہے؟ کامن سینس کی بات ہے. بات یہ ہے کہ گرو ارجن صاحب جی کو جتنی بانی اکتر ہو سکی، مل سکی، وہ اکتر کر کے ہمارے لیے ایک بینکویٹ ہال آف اسپرچویلٹی، ضیافت خانہ روحانی تک چھوڑ جائے. مت جتنی بانی مل سکے. تو ان بے قیمت کلاموں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ شوق ملتا. مگر یہ پڑھنا کافی نہیں، کئی باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسے کسی ان بھائی پوچھتے سنے سب سمجھ آتی ہے. یہ آج صبح کا مضمون تھا. پنڈت جی، ایک پنڈت جی کبیر صاحب کے پاس آ گئے اور بحث باتیں کرنے لگے. یہ عام قاعدہ، ان بھائی پوچھ جب بھی آتے رہتے ہیں، پنڈت لوگ، عالم لوگ آ کر بحث باتیں کرتے ہیں علمیت کے زوم میں آ کر. نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ تو علم کے گھاٹ پر بولتے ہیں، وہ انبھو کے گھاٹ پر بولتے ہیں. پھر بھائی ان دونوں متفق راہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کبیر صاحب کے پاس آئے تو کہنے لگے، ارے پنڈت، میرا تیرا منوا کیسے ایک ہو ہی رہے؟ اے پنڈت، تیرا اور میرا من کیسے ایک ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں آنکھن دیکھی، تو کہتا ہے کاغذ کی لیکھی. ارے بھائی میں تو آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں اور تو کاغذوں کا پڑھا پڑھایا بیان کر رہا ہوں. تو انبھی پرش جس نے پایا اس کی صحبت دوسرا سوال بنے گا. اور جب جتنے گرنتھ پوتھی ہیں بے شاستر ہیں، ہمیں کیا کہتی ہیں؟ اسی پر زور دیتی ہیں. کیا گر بن پاؤ نے ترے نہ کوئی، گر بن پاؤ نے پاؤ ساگر کوئی بھی نہیں کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں جو بدھی ہماری جو ہے شنکر سم ہوئی، شنکر جیسی بدھی ہماری ہو جائے تو بھی بغیر گرو کے ہم اس کو نہیں جان سکتے. اس کا کارن کیا؟ بدھی علم کا نام ہے، وچار کرتی ہے کس چیز کو؟ جو درش کا جان، ادرش کا تو اس کو پتہ نہیں. اور وہ فلسفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ویئر دی ورلڈ فلاسفیز اینڈ ویئر دی ریلیجن اسٹارٹ. بدھی باہر چیزوں کا بھی میٹر آف انفرنس، نتیجہ اثر کرتی ہے. صحیح معنوں میں نہیں بیان کر سکتی وہ کیا ہے کیا نہیں، مگر انبھی پش دیکھ کر بیان کر رہا. تو اس لیے زوردار لفظوں میں ہمیشہ یہی بیان کیا. تلسی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رام کرشن تے کو بڑو تن بھی تو برکی. بھگوان رام اور بھگوان کرشن سے کون بڑا ہوگا؟ ارے بھائی انہوں نے بھی تو گرو دھارن کیا ہے. تین لوگ کے نائک کا گر آگے آ رہی کہ لوکی ناتھ تھے مزدورو کے آگے سے نہیں کر. کس لیے؟ اسی آتم انبھو کے لیے. اپنیشدوں میں ذکر آیا ہے انگریش رشی نے شبد کی تعلیم देवकी के लड़के कृष्ण को दी। सबने गुरु रहा भाई जो इल्म हासिल करना कुदरती बात है उसके मार के पास जाना पड़ेगा। तो बगैर अनुभवी पुरुष के सिर्फ किताबों के पढ़ने से शौक तो मिलेगा, महात्माओं की शहादतें भी मिलेंगी, मर हो सकता है कई जगह हम उसके सही मानों को ना समझ सकें। सिर्फ इल्म और बुद्धि के घाट पर उसकी तफसीरें तो करेंगे मगर कई जगह गलती का इम्कान है। फर्ज करो एक मिसाल मैं आपको देता हूं, जहां का घंटा बाजे चौकुंठ, ये गुरबानी कहते हैं, जिसका घंटा चौकुंठी में बज रहा, यही अब हाफिज साहब कह रहे हैं ईरान में बैठे कस न दानिश के मंगल गए माशू कुजास हमीन के बांगे जब से मियास, कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ है, इतना है कि वहां से घंटे की ध्वनि आ रही। उसने भी घंटे का जिक्र किया। और अब बाहर देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं घंटी बजाते हैं, मंदिर है उसमें घंटा बजाता है जो दाखिल होता है, हर एक धर्म स्थान में घंटे शंख की रिवाज है, जैन मत बुद्ध मत में जाओ वहां भी यही हाल है घंटे बजाते। अरे भाई ईसाइयों की गिरजों में जाओ वहां भी घंटा बजता है। अरे भाई ये कॉमन सिंबल है क्या, है बुद्धिमान से क्या अर्थ करें। मेरे पास जब मैं मुलाजमत में था मेरे अंदर एक सुप्रिंटेंडेंट था ईसाई, मैंने उसको सवाल किया भाई देखो मंदिरों में भी घंटा बजता है, सिर्फ गुरुद्वारों में जैन मत बुद्ध मत के मंदिरों में भी ईसाइयों के गिरजों में भी घंटा बजता है, इसका मतलब क्या। वहां का बिशप था लाहौर का, बड़ा पावर्ड सबसे लाइक गिना जाता था, पर तुम मुझसे ये पूछो इसका मतलब क्या। वो गए पूछा कहने लगे इट इज ओनली टू कॉल मेन टूगेदर, ये सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए घंटा बजाया जाता। अब आज ये बताएं वो तो मान लो कि लगातार घंटा बज रहा है लोगों को बुलाने के लिए, पर मंदिर में जो जाता वो खुद घंटा बजाता है, वो ऐसा है ना। अब आलम यहां क्या करेगा आप बताएं, इल्म सीना वाले और इल्म सफीना वालों में बड़ा भारी फर्क है। ये जो ग्रंथ पोथियां हैं ना ये इल्म सीना वालों के अनुभवी पुरुषों के कलाम है, ये आलमों से अगर सुनोगे तो सही इम्पोर्ट को नहीं पा सकोगे। हम ग्रंथ पोथियां पढ़ सकते हैं मगर उसके सही मानों को नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक जब तक किसी आमिल पुरुष से न सुने। उस इल्म के साइंस, उस साइंस के माहिर से वो क्या कौन सी साइंस है, वो सेल्फ नॉलेज गॉड नॉलेज की है। अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करना है आत्मा का पिंड से इंद्रों से और मन और बुद्धि से, ऐसे आमिल से सुनेंगे वो नुकते राज के तुमको बतलाएंगे, नहीं तो सील्ड बुक्स हैं। बेशक पढ़ते रहो हकीकत को नहीं पा सकोगे। इसका ये मतलब न समझो कि ग्रंथों पोथियों का पढ़ना नहीं ये पहला कदम है, ये शौक को दिलाने के लिए है, मतलब उसका राइट इम्पोर्ट समझने के लिए अवश्य हमें किसी ऐसे महापुरुष के पास बैठना पड़ेगा जो उस साइंस का माहिर है, उसका नाम आप पूछना पड़ेगा। तो इसलिए ताकीद की गुरबानी ने आज कहा बिन गुर पूरे कोई न पावा है, लख कोटि जे कर्म कमावे, बगैर गुरु पूरे के कोई भी उसको नहीं पा सकता, कहते लाखों करोड़ों कर्म क्यों न करे। इसका कुछ मतलब है आप तो समझे। तो दूसरी जरूरत उस्ताद की हुई, पहले ख्वाहिश हो फिर वो तलाश करेगा, तलाश के लिए वो उन माहिरों के पास जाएगा जो उसके जानने वाले हैं और हमको उनके पास बैठकर आसानी हो जाएगी, ये दूसरी जरूरत है। और इसके बाद तीसरी जरूरत किस बात की होगी, वो महात्मा क्या करेगा, वो आमिल तो है उस साइंस के जानने वाला, हम लोग उस साइंस से नावाकिफ हैं, तो कुदरती बात है वो हमको पुराने महात्माओं का जो आज दिन तक आए, जिनके बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद है इस सफर के हालात के, वो से कोटेशन देता है। कभी कबीर साहब का देगा, कभी तुलसी साहब का, कभी गुरु नानक साहब का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। इसलिए ताकि हमें यकीन हो कि ये बात वही है जो आगे करते रहे। ये नई साइंस नहीं, याद रखो, पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन। हम भूलते रहे, महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे। फिर हम भूल गए, कोई और महात्मा आकर उसका अनुभव ताजा कर गया। आज दिन तक जितने महात्मा आए सबके बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद है। खुशकिस्मत है कि नहीं, इससे ज्यादा और खुशकिस्मत क्या हुई। अगर हम कहीं पहले जमाने में आते तो जो महात्मा उस वक्त तक नहीं आए थे उनके कलाम न होते हमारे पास, तो वो उन महात्माओं के कलामों से आपको कोटेशन देता तुम्हारे समझाने बुझाने के लिए। इस खातिर नहीं कि वो उनका मोहताज है, याद रखो, वो उस चीज को पा चुका है जिसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में है। उन महात्माओं ने जिस चीज को पाया है वो भी उसी रास्ते के जाने वाला है और उसका वो देख कर बयान करता। मेरी गुरबानी ने कहा, सुन संतन की साची साथी, सो बोले जो देखे आके। संतों की शहादत को सुनो, इस पर ताकीद की है कि संतों की शहादत को सुनो, क्योंकि वो शहादत सच्ची है। इसलिए दोनों ने देख रहे हैं जो बयान कर रहे हैं। तो ऐसे पूछो कि सोगत में जाकर दूसरा सवाल किया, उनके पास जाओ, सवालात करो, जवाब लो, कॉमन सेंस टॉक है। जब आपकी तसल्ली हो जाए तो उस पर आपका विश्वास आने लगेगा। जब विश्वास आ जाए फिर वो जो कहे सो करो। सवाल यह, महात्मा की कॉम्पिटेंसी पर सोबर संगत करो। जब आपको ये पता लग जाए कि ये जो कुछ कह रहा है वही कुछ है जो तब महात्मा कहते चले आए हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए तजुर्बे की खातर हम वो चीज कर सकते हैं। सवाल करें, जैसे कि पेट में पानी हो पड़ा हुआ, डॉक्टर ने कहता है इसके पानी पड़ा, मगर
वो हम का पर्दा बिगड़ता बिगड़ता कौन सा पिता है जो ये नहीं चाहता कि बच्चे उसके पास ना आए। वो तो चाहते हैं हमारा मुंह ही दुनिया की तरफ है। थोड़ा उधर मुंह करो, एक कदम उठाओ, कोट पहना आगे बढ़े। अगर कमी है तो हमारी चाकरी में, क्योंकि चाकरी माए उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं।
कमा के अंदर है पाता पाता है ताबे फरमान जर्रा जर्रा, कमा के अंदर है पाता पाता है ताबे फरमान जर्रा जर्रा ताबे फरमान जर्रा जर्रा। किसी की मानो रहम है वल्ला, किसी की मानो रहम है वल्ला, अगर ना मानो इजारा क्या है, अगर ना मानो इजारा क्या है, किसी की मानो रहम है वल्ला, अगर न मानो इजारा क्या है, अगर न मानो इजारा क्या है। जो बख्शो हमको बड़ी है बख्श, अगर न मानो ना घर ना दर है, जमीन ना दर है सब तुम्हारा हमारा क्या है सब तुम्हारा हमारा क्या है रंग तेरा शहंशाह तेरा ये कुफ्र है कहना मेरा मेरा है रंग तेरा शहंशाह तेरा ये कुफ्र है कहना मेरा मेरा है जैसा उसको समझना वैसा सिवाय इसके कफारा क्या है जो बख्शो हमको बड़ी है बाकी अगर न बख्शो तो चारा क्या है न घर न दल है जमीन दल है सब तुम्हारा हमारा क्या है सब तुम्हारा
सदगुण जवान बड़ी पुरुष है सत का स्वरूप हो चुका है वो हमेशा उसका काम क्या रहा वो सबको बिला कर बैठता रहा सदगुण ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो वहां कौम मजबूत समाज मुल्कों का सवाल नहीं सब आत्मा बिधारियों का सवाल है उस महापुरुष के जिसके चरणों में मुझे बैठना नसीब हुआ उसके हुक्म से ये कॉमन ग्राउंड है जिस पर हम सब भाई आज विराजमान सवाल नहीं जहाँ जहाँ आप हो मुबारक हो वहाँ रह कर नेक पाक और सदाचारी बनो और आत्मानुभव को पाओ प्रभु की याद में लग जाओ उस मालिक की याद से नशे को पियो उस महापुरुष का याद में एक थोड़ी सी कब करिए फिर भोग पर जाएगा
सच्चे सतगुर तो जावा सावन प्यारे तो जावा मैं बलिहार नी सयो मैं बलिहार नी सयो सच्चे सत जावा सतगुर प्यारे तो जावा मैं कोल कुमावा जिंदड़ी कोल कुमावा जिंदड़ी लख लख वार नी सयो लख लख वार नी सयो कोल ते दूध जई दाड़ी सिर सोई दस्तार नूरी मुखड़ा ते दूध जई दाड़ी सिर सोनी दस्तार मिट जांदे सब संत मन दे दर्श करे एक बार आप ही आए सब ते आप ही आए सब ते करन उपकार नी सयो करन उपकार सच्चे सतगुर तो जावा सावन प्यारे तो जावा मैं बलिहार सुंदर रूप गुराना प्यारा मस्तक सी नोरानी तारियां दे विच चन ज्यों सोना कोई ना उसदासानी चलिया जाए ना उदाल शिकार नी सयो चलिया जाए ना उदाल शिकार नी सयो सच्चे
सतगुर तो जावां सच्चे सतगुर जावां मैं बलिहार नी सयो मैं बलिहार गल विच सोना कोट वास कट कड़ी ते नाल चैन मुख विचों बालन अमृत बानी सुंदर सोने बैन दुख मिट जावन करे जो दीदार नी सयो करे दीदार नी सयो सच्चे सतगुर तो जावां सावन प्यारे तो जावां मैं बलिहार नी सयो मैं बलिहार नी हथ विच खोंडी अपने फड़के चलदा सी सोनी चाल कौन सुराफ बुलावा सयो परख सके ओ लाल चूंडिया मैं ता सारा संसार नी सही सारा संसार सच्चे सतगुर तो जावा मैं बलिहार नी सही मैं बलिहार नी सयो सावन प्यारे तो जावा सावन आया खुशियां होइया आके मी बरसाए मेरा सावन ऐसा आया जिस डूबदे आन तराए शीस झुकाओ हर दम शीस झुकाओ हर दम बारंबार नी सयो बारंबार सच्चे सतगुर तो जावां बलिहार नी सयो मैं बलिहार नी सयो सावन प्यारे तो जावां सावन प्यारे तो जावां मैं बलिहार नी सयो मैं बलिहार
सखियाने कोई नजर मेरी ते खूब दी नहीं है सावन दीन दयाल मेरे तेरा नाम लिया जड़ी डुब दी नहीं है सावन दीन दयाल मेरे तेरा नाम लिया बेड़ी डुब दी नहीं लख शकला तकियां अखियां कोई नजर मेरी विच खूब दी नहीं तू ही सतगुर दाता असां पापियां दा पिता माता है तू ही सच्चा सतगुर दाता असां पापियां दा पिता माता है तेरा नाम लिया पीर मेरे तेरा नाम लिया पीर मेरे मुश्किल होवे हल कदी रुक दी नहीं लख शकला तकियां अखियां कोई नजर मेरी विच खूब दी नहीं है सावन दीन दयाल मेरे तेरा नाम लिया दिली डुब दी नहीं मुर्दा जिंदा कीते ऐ पीर तुसी मुर्दे
निकट व्यापस से मिल बात न करते भाई, एक ही संगत में तुम रह रहे हो, एक ही घर में जिस्म में आत्मा और परमात्मा दो भाई बस रहे हैं, मगर आत्मा प्रभु का तो बात नहीं कर रहे। कितना अफसोस कब, बल्कि अफसोस से और ज्यादा कहना पड़ता। अरे भाई हमको अपने आप की विशुद्ध में, हम जिस्म के चलाने वाले थे जिस्म का रूप बन गए, अपने आप को गुम कर लिया, कितना अफसोस। अगर अपने आप को जानेंगे तो प्रभु को जान सकेंगे ना, क्योंकि आत्मा ही नहीं अनुभव करना है प्रभु का, जिसे किसी ने नहीं दे।
नाम है रमज इस दीपाई, या मैं रमज इस दीपाई, सोता मैं ना मार गवाई, सोता मैं ना मार गवाई, अंतर बाहर कोई सफाई, अंतर बाहर कोई सफाई, जित वल देखा यारो यार, मुर्शद दी नवियों नवी बार।
जब मुर्शद मिलता है तो कहते जिसम की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, इंसान इसके ऊपर आने लग जाता। कहते क्या मिलता है, कहते जिसम जिस्मानियत के साथ ही मैं और मेरी का झगड़ा, जब ऊपर आ गया है मैं मेरी कहा रही, कहते उसकी कृपा से आप जिस तरफ भी देखते हैं सब तरफ वही नजर आता, वो आंख बना देता है जिसे वो नजर आने लग जाता। वो आंख कौन सी है, नानक से अखियां व्यंजन जिसो मापरे, ऐ नानक वो आंखें और है जिसे वो नजर आता, वो चमड़े की आंखें नहीं, वो भी किच्चू है, वो शिव नेत्र है, वो थर्ड आई है, सिंगल आई है, वन आई है, जो हर एक घट घट में है मगर वो सबकी बंद। इसीलिए संतों ने कहा जिनकी वो आंख नहीं खुली वो सब अंधे। जब वो मिलता है कि नई सी नई बाहर सदगुरु के मिलने से मिलती है, नई दुनिया का सफर करने वाला हो जाता, नए से नए रंग को पाता।
वेद कुरान पढ़ पढ़ थके, वेद कुरान पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया तप गए माथे, सजदे कर दिया तप गए माथे, ना रब तीरथ ना रब मके, ना रब तीरथ ना रब मके, जिन पाया तिन नूर जमाल, इस कदी नमियों नमी बहार।
सदगुरु से प्रेम हो जाने में क्या क्या रंग मिलते। अरे भाई जिसको हम तीर्थों तटों पर तलाश कर रहे थे, जिनको हम ग्रंथों पोथियों के पढ़ने में ढूंढ रहे थे, अरे भाई निकला कहा अंतर का जीव निकला। ग्रंथों पोथियों के लिए भी हमारे दिल में जैसा है ये अनटोल्ड ट्रेजर्स ऑफ दिस।